संतुष्ट जीवन देते हैं और इस बेचैनी जीवन भर उसका छुटकारा नहीं होता। जब उसको पता लगता है कि इससे छुटकारे का एक रास्ता है, वो है ईश्वर की खोज, ईश्वर को जानना या आत्मदर्शन, तब उसको बताया जाता है कि प्रभु का स्मरण यदि करोगे किसी गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार, तो जब अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन या अनुभव होता है उस समय मन को पूर्ण संतोष या शांति प्राप्त होती है। लेकिन जब ये मनुष्य स्मरण करने की कोशिश करता है, इस मार्ग पर चलता है, तब एक परेशानी इसके सामने आती है कि जब किसी मंत्र के माध्यम से प्रभु को याद करता है तो मंत्र का स्मरण तो होता नहीं, उसके मुकाबले में मन की बेचैनी खड़ी हो जाती है। मन के अंदर तरह तरह के संकल्प, तरह तरह के विकार, तरह तरह की वासनाएं, उनके संकल्पों का उदय उसमें निरंतर होता रहता है। तो इस चंचलता से मुक्ति के लिए, इस मन की बेचैनी से मुक्ति के लिए सत्पुरुष कहते हैं कि जीव को प्रभु के शरणागत होना चाहिए, प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। तो वो शरणागति क्या है उसको समझने की कोशिश करें। पहले तो हम जहां खड़े हैं उस स्थिति का जरा निरीक्षण करके देखें। वैसे तो बचपन से ही हमको आरती के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के माध्यम से शरणागति समझाई जाती है, लेकिन वो जो आरती हम करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनके शब्दों पर हम कितना ध्यान देते हैं, जरा ये समझने की बात है, ये देखने की बात है। आमतौर पर यह होता है कि ये केवल प्रार्थनाएं रट ली हैं और उन प्रार्थनाओं को हम उच्चारण करते रहते हैं, उसके अर्थों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि एक बड़ी साधारण सी आरती है जो शायद हम सभी उच्चारण करते हैं या कभी ना कभी उसको उच्चारण किया होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हम सभी जानते हैं। जब आरती का उच्चारण होता है तो मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूं, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति सामने होती है या उनके फोटोग्राफ सामने होते हैं और हम इस आरती का उच्चारण करते हैं। देखिए, ये आरती कह क्या रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसके कुछ अंश केवल आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि इसका निर्णय हो सके। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अब देखिए इसका दोहा ये क्या कह रहा है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, अर्थात तुम ही मुझको पैदा करने वाले हो, तुम ही मेरा पालन करने वाले, तुम्हारे अलावा मैं किसकी शरण में जाऊं, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, तुम्हारे बिना दूसरा कोई है ही नहीं, केवल एकमात्र ईश्वर है, उसके लिए मैं उच्चारण कर रहा हूं ओम जय जगदीश, उसको मैं ओम करके कह रहा हूं। ओम की कोई आंख नहीं होती, ओम की कोई नाक नहीं होती, ओम का कोई रूप नहीं होता, वो जगदीश ओम रूप है, इसी को वेदों में नाद रूप कहा करके कहा गया, शब्द ब्रह्म करके कहा गया या शब्द रूप परमेश्वर करके कहा गया। जिसको महाराज जी ने संताला से लिखा, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। तो उसकी तो हम प्रार्थना करते हैं, उसकी आरती कर रहे हैं, लेकिन दस्यों देवी देवता हमने सामने रख रखी। तो हमारी आरती में और हमारी जो सोच है उसमें कितना बड़ा अंतर है। ये आरती हमारी सोच को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन केवल हम उच्चारण करते जा रहे हैं, सोच में हमारे कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। आगे देखिए,
तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा हो। पूर्ण कौन होता है? जिसके अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं होती है, तब इसको पूर्ण कहते हैं। और तुम अंतर्यामी, और तुम अंतर्यामी हो, मेरे अंदर ही निवास करने वाले। अब देखिए, जिस प्रभु के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना क्या कह रही है कि मैं तेरे अंदर निवास करता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। इसीलिए वो तो अंतर्यामी है, हमारी जान रूप है। इस शरीर में जो जान है, जो जीवन सत्ता है, उसी का नाम पारब्रह्म है, उसी का नाम जगदीश्वर है, वो अंतर्यामी। तो जो अंतर्यामी है वही हमारा स्वामी है, क्योंकि वो हमारी जान है। उसके बिना हमारी हमारा शरीर का अस्तित्व है ही नहीं। शरीर से जान निकल जाए तो शरीर का अस्तित्व है क्या? आगे देखिए,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम अगोचर हो, गो कहते हैं इंद्रियों को। तुम मन इंद्रियों के अनुभव में आने वाले नहीं हो, ना मन की वहां तक पहुंच है, ना इंद्रियों की वहां तक पहुंच है। अब बताओ, हम चाहते हैं कि बाहर ईश्वर खड़ा हो, हम उसके दर्शन कर ले, और जो आरती पढ़ रहे हैं वो कह रही है इंद्रियों से दर्शन हो नहीं सकता उसका, क्योंकि वो अंतर्यामी। अरे इंद्रियों से तो बाहर की चीज अनुभव दर्शन होती है ना, वो अंतर्यामी इंद्रियों से कैसे अनुभव में आ सकता है? और मन भी बाहर के, जितना बाहर है उसके बारे में मन विचार करता है। तो इसीलिए रामायण में भी संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि गो गोचर जहें लग मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि जहां तक इंद्रियों की और मन की पहुंच है, वो सब मेरी माया है, वो मन और इंद्रिया मेरे तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए कहते हैं कि किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, मैं अंधबुद्धि जीव, मैं अज्ञानी जीव, मैं तुमसे कैसे मिलूं? क्योंकि जिससे भी मिलता हूं तो मन और इंद्रियों के द्वारा मिलता हूं, और तुम इनसे ऊपर हो तो मैं तुमसे कैसे मिलूं? इसीलिए आदमी को शरणागति चाहिए। अंत में कहते हैं, देखिए प्रार्थना क्या हो रही है,
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे।
जब वो अगोचर है, इंद्रियों के मन में अनुभव आने वाला नहीं है, तो ये जीव करेगा क्या, ये मनुष्य करेगा क्या? तो कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरोगे। अब उसकी समझ में आइए कि मन और इंद्रियों के द्वारा मैं बाहर संसार में विषय विकारों में फंस जाता हूं, यही तो मेरा पाप है। केवल किसी की जेब काट लेना पाप नहीं है, संसार के विषय विकारों में फंसना यही जीव के मानसिक क्लेश की जड़ है, यही उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि ये पाप मेरा प्रभु हरो, विषय विकारों से मुझको मुक्ति दिलाओ। इसके तुलना में क्या दो? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतन की सेवा क्यों? क्योंकि शरणागति संतों से ही सीखी जाती है, वही सिखाते हैं। जिस प्रकार वो प्रभु के शरणागत हुए, उनके जीवन को देखकर उनका ज्ञान श्रवण करके हम शरणागति सीखते हैं। सीखते हैं कि वो ईश्वर के लिए जीते हैं और ईश्वर का होकर जीते। संत का जीवन देख लिए, किसी भी गुरु का जीवन देख लिए, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर के लिए जीना और ईश्वर का होकर जीना। वो केवल प्रभु के हैं और किसी के नहीं, सारी दुनिया में वो किसी के नहीं है, केवल प्रभु के। तो ये है श्रद्धा भक्ति जो हमको शरणागति की ओर ले जाती है। अब हमारी वर्तमान स्थिति है, उस पर आगे विचार करके देखें। शरणागति प्राप्त करने के दो साधन हैं। अब जब शरणागति चाहिए तो मिले कैसे? सबसे पहला तो है शास्त्रों पर विश्वास। जैसे मान लिया गीता है, गीता को पर हमारी सबकी श्रद्धा है, उसमें कृष्ण का संदेश है, तो जो वेद व्यास ने लिखा, तो वो जो गीता है उस गीता पर हमारा पहले विश्वास। यदि हम उसका कोई श्लोक सुनते हैं, समझते हैं, तो जो कुछ भी वो गीता कह रही है उस पर विश्वास तो हो। यदि विश्वास नहीं है तो शरणागति कैसे होगी? तो सबसे पहली चीज क्या है कि शास्त्रों पर विश्वास। इसीलिए शास्त्रों को सत्संग के माध्यम से श्रवण करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा होता है विवेक, कि अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने बंधन के बारे में, मुक्ति के बारे में सही सही समझो। तो पहले देखें कि शास्त्र पर विश्वास किस प्रकार होना चाहिए। कोई तो उसका लिए एग्जाम्पल चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, सारे भूत प्राणियों का जो ईश्वर है वो हृदय में निवास करता है। हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, सारे भूत प्राणियों का या सारे जीवों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो उनके हृदय में निवास करता है। और वो करता क्या है निवास करके? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो इस शरीर रूपी यंत्र में विद्यमान सारे प्राणियों को उनके प्रारब्ध के अनुसार संसार में भरमाता है। वो ये काम करता है। इसी को वाणी में भी देखें, महाजी की वाणी में, तो महाजी की वाणी इसी का बयान कर रही है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। इसी का नाम प्रारब्ध है, इसी का नाम भावी है, इसी का नाम भाग्य। तो अब बताइए, गीता भी वही बात कर रही है, संतवाणी भी वही बात कह रही है कि जो कुछ भी संसार में घटनाक्रम घट रहा है ये जीवों के प्रारब्ध के अनुसार घट रहा है और इसका कारणकर्ता ईश्वर है। लेकिन हम लोग जो आम संसारी हैं वो इस बात को कह तो देते हैं किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो कहते हैं भाई वक्त आ गया था, ये संसार से चला गया। लेकिन निश्चय नहीं होता, संशय बना रहता है, शायद मेरा कोई प्रयास करूं मैं आयु बढ़ा लेता या इसको बचा सकता था, पूर्ण विश्वास नहीं। इसीलिए सत्पुरुषों के जीवन से कुछ बातें हमको सुननी चाहिए। सत्पुरुषों का जीवन इस बात का प्रमाण होता है कि वो कहते हैं किस प्रकार से मनुष्य का जीवन प्रारब्ध के वशीभूत है। देखिए महात्मा मंगत राम जी, उनकी एक ममेरी बहन थी मूलावन, जो महाराज जी तो गंगोठिया में हुए थे, जो आप पाकिस्तान में चला गया इलाका जिला रावलपिंडी में, उनके गांव के पास ही उनकी शादी हुई थी। तो क्या हुआ, उनका बहन का जो बेटा था हरवंश लाल, वो मध्य प्रदेश में पंचमणि में नौकरी करता, उसकी शादी निश्चित हुई। जब विवाह निश्चित हुआ तो लड़के को टेलीग्राम करके इंटीमेशन दी गई कि इसी दिन विवाह है तो पहुंच जाना। उसने कहा ठीक है मैं समय पर पहुंच जाऊं। विवाह का वक्त आ गया, वो वहां से चल दिया दिल्ली के लिए, दिल्ली से ट्रेन बदल के उसने रावलपिंडी जाना था, वहां से गांव जाना था। मेहंदी की रस्म की रात आ गई लेकिन लड़का जो है नहीं पहुंचा। सबको चिंता हुई क्या हो गया, वहां से चला है अभी तक पहुंचा नहीं है। लड़की वालों को सूचना दे दी गई कि लड़का नहीं पहुंच पाया है, कृपया सारी कार्यवाही स्थगित कर। अब वहां रोना पीटना शुरू हो गया। फिर महाजी से भी कहा भैया वो कहां गया, क्योंकि वो जानते थे कि महाराज जी जो है कि क्या स्थिति है, तो बताओ उसको क्या हुआ। तो महाजी ने इतना ही कहा कि अभी वो जिंदा है, वक्त पर आ जाएगा, जब उसका वक्त आएगा आने का तब वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। वक्त निकलता चला गया, खोजबीन होती रही, नहीं मिला। 12 साल बीत गए, 12 साल बाद जब खोजबीन करते हुए दिल्ली पहुंचे तो वहां जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहां जाके तलाश करने गए, शायद यहां कभी आया हो, तो पता लगा कि हां एक लड़का आया था यहां पर और अलमारी में सामान बंद करके बाजार गया था लेकिन लौटकर नहीं आया। अलमारी खुलवाई गई, देखा तो वास्तव में हरबंश लाल का ही सामान था उसमें। तब फिर चिंता हुई चला कहां गया। फिर जब महाराज जी उनके पास मिलने गए तो फिर महाराज जी ने यही कहा कि धैर्य रखो, वक्त आने पर वो पहुंच जाए। करते करते दिसंबर 47 आ गई, हिंदुस्तान का पार्टीशन भी हो चुका था, महाराज जी कहानुवान में विराजमान थे, वहां सत्संग हो रहा था। एक प्रेमी पठानकोट की साइड से पंडूरी गांव से वहां आया, उसने जब सत्संग सुना तो सत्संग में उसने महाराज जी के गांव का नाम ही सुना गंगोठिया। सत्संग खत्म हुआ तो उसने महाराज जी से कहा महाराज जी इस गांव का एक व्यक्ति हमारे गांव में बाबा है, वो मंदिर का पुजारी है, तो महाराज जी समझ गए कि वो हरबंश लाली है और कोई नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि उनको पैसे दिए किराए के, उन्होंने कहा कि उसको तुम लेकर यहां आ जाओ। अब देखिए इस बात को 14 साल बीत चुके, 14 साल बाद ये घटना घट रही है। तो जब वो वापस लेके आए तो वो हरबंश लाल ही निकला। तब महाराज जी ने पूछा उससे भाई तुम कहां चले गए थे, तब उसने सारी घटना बताई कि जब मैं दिल्ली पहुंचा था, गुरुद्वारे में सामान रखा, मैं बाजार निकला तो मैंने एक मुर्दे को जाते हुए देखा, उसको देख के मेरे अंदर विचार आया कि संसार नाशवान है, ये शरीर भी कभी भी चला जाएगा, तो क्यों ना इसको ईश्वर के भजन में लगाया जाए। फिर उसके दिमाग में ये आया, जब शादी करूंगा तो कितने बंधन होंगे, तो भजन कैसे होगा, इसलिए मैं कुछ बाबाओं के साथ में चला गया। चलते चलते एक दिन जब मैं पठानकोट के पास पहुंचा, उस ग्राम में गांव के बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझको पुजारी बना दिया। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तब से मैं वही हूं। लेकिन महाराज ने कहा कि तुझको आज तक चैन तो वहां मिला नहीं। वो कहता है हां मुझे चैन तो नहीं मिला, ये बात सत्य। तो उन्होंने कहा कि तेरी मां बड़ी परेशान है, तू वापस जा, मां की सेवा कर और खर्चे के लिए कोई छोटा मोटा रोजगार कर। उसने उनकी बात मान ली। फिर मूलावंती उनकी जो सिस्टर थी महाराज जी की, उनको बुलाया गया, उनके वो बेटा उनके हवाले कर दिया। अब विचार करने की बात यह है, महाराज जी जो त्रिकालदर्शी हैं वो तो जान रहे हैं इस बात के लिए, लेकिन जो घर वाले हैं क्या उनके मन की बेचैनी खत्म हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि वहां डाउट है, संशय है। कह तो रहे हैं, पता नहीं बात सत्य भी है या नहीं। तो जो ये वाणी होती है, जो सत्पुरुषों के वचन होते हैं, यही हमारी आंखें खोलते हैं। देखिए ना कि जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, अब भरत जब अयोध्या लौटते हैं, बड़े बिलखते हैं, बड़े रोते हैं, तब उस समय वशिष्ठ मुनि आकर उनको समझाते हैं। रामायण में आता है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखु कहउ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जसु विधि हाथ। वशिष्ठ मुनि भी वही बात कर रहे हैं। महाराज जी आज के वक्त में बात कर रहे हैं, उनके ही भांजे को 14 वर्ष का वनवासी समझो, माता पिता से 14 वर्ष दूर रहा, और उसी प्रारब्धवश राम और सीता अपने माता पिता से दूर रहे। तो भावी प्रबल है, चाहे अवतारों के लिए हो, चाहे साधारण मनुष्य के लिए हो, कि ये बात हमको सीखनी चाहिए कि संसार चक्र जो है ये प्रभु के अधीन है। उसी को ये गीता कह रही है कि भ्रामयन सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, कि सारे जीव प्राणियों को जो इस शरीर में रह रहे हैं, मैं उनको उनके कर्मानुसार, उनके प्रारब्ध अनुसार संसार में भरमाता हूं, इसमें कोई बदल नहीं हो सकती। तो इस प्रारब्ध चक्र पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विषय है शरणागति, और प्रॉब्लम हमारी यह है कि ईश्वर की याद करने बैठते हैं तो मन हमारा संसार में भागता रहता है, कभी किसी भय में भागता है, कभी कोई मुसीबत की तरफ इसका रुझान चला जाता है, कभी अन्य किसी वासना की तरफ चला जाता है। तो इसका जो भटकना है ये बंद कैसे होगा, उसका रास्ता है शरणागति। तो शरणागति का एक सबसे पहले अंग है कि शास्त्रों पर विश्वास। तो शास्त्र जिस निर्णय को दे रहे हैं उस पर हमारा वैसा ही विश्वास होना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। हम बड़ी संसार में कोशिश करते हैं कि किसी से कोई पाठ करा लें, किसी से कोई मंत्र पढ़वा लें, शायद हमारा प्रारब्ध वो बदल देगा। इसीलिए सारी जिंदगी हम अंधकार ढोते रहते हैं और शास्त्रों को पढ़ने की, उनको समझने की कोशिश नहीं। आगे देखिए कि फिर करना क्या है। तो गीता कहती है आगे अगले श्लोक में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। वो कहते हैं हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सब प्रकार से तू उस परमात्मा की शरण को ही प्राप्त हो। तमेव शरणम गच्च सर्वभावेन भारत। क्यों प्राप्त हो? क्योंकि तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करना है ईश्वर ने ही करना है। और इसी बात को महाराज जी की वाणी कह रही है, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिसला। अरे जिसने तेरे शरीर की रचना की है, जिसने देह तुझको दी है, तू उसकी शरणागत। क्या वो देह में बैठा नहीं जानता कि तूने संसार में क्या करना है, संसार को कैसे चलाना तू जानता है क्या? जरा विचार करके देखो, ये सारी सृष्टि आपके सामने मौजूद है, ये क्या इंसान चला रहा है? जिस धरती पर बैठे हो, कितनी गति से ये घूम रही है कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, कितनी स्पीड से घूम रही है, और आप इस पर बैठे हो स्थिर, तो क्या मनुष्य का कोई रोल है इसके अंदर? लेकिन मनुष्य कितना अहंकारी है। सूर्य की रोशनी ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, अन्नी पैदा नहीं होगी। पानी ना हो तब जिंदा नहीं रह सकते, हवा में ऑक्सीजन ना हो तब जिंदा नहीं रह सकते। इसमें मनुष्य का कोई रोल है क्या? तेरी सारी जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में, अहंकारी तो इतना है कि मेरे बिना दुनिया चलेगी। तो समझना क्या है तुम्हें? संत वाणी कह रही है कि कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिसला। वो प्रभु कारण भी है कर्ता भी है, बस यहां बात बारीक हो जाती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा जीवन भर हम गलती करते रहते हैं और प्रभु का नाम भी लेते रहते हैं। ये वाणी दो बातें कह रही है, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। मन की चिंता क्यों त्याग? कि कारण भी प्रभु है और कर्ता भी प्रभु है। इसको जरा एक उदाहरण से समझे। मैं बैठा हूं चैन से यहां पर, अचानक मेरे मन में संकल्प आता है चलो बाग में घूम आते हैं। एक संकल्प आया, बाग में जाके बड़ी मौज आई। अब बैठा हूं, जैसे ही संकल्प आया मैंने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाकर मैं स्कूटर उठाया, गाड़ी उठाई या पैदल ही चला, ये जो कर्म इंद्रियां हाथ पैर इनका उपयोग किया, बाग में पहुंचा। बाग में जाके मैंने अपनी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग किया, आंख से दृश्य देखे, कान से राग सुने, मैं खुश हुआ। यदि मेरे मन के अनुकूल वहां चीजें नहीं मिली तो मैं दुखी हो गया। तो जो कर्म मैंने किया, जो संकल्प उठाया उसके द्वारा कर्म किया मैंने, कर्म के का जो परिणाम सुख और दुख है, उसके द्वारा मैं खुश हुआ या दुखी हुआ। अब विचार करने की बात यह है कि जब मेरे मन के अंदर घूमने का संकल्प आया, उससे पहले तो मैं शांत बैठा हुआ था। संकल्प के आते ही मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो गई। अब उस बेचैनी को खत्म करने के लिए मैं क्या घूमने का प्रोग्राम बनाता हूं। और रात दिन हम देखते हैं कि बालक बैठा है, सब ठीक ठाक है, मन में कोई इच्छा आई उसके, उसका परेशान होना शुरू हो जाता है। तो इच्छा का उठना या मन के अंदर संकल्प का उठना, यह जीव के लिए या मेरे लिए दुख का कारण है, वो मुझको बेचैन करता है। अब उस बेचैनी को खत्म करने के लिए मैं उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता हूं। तो संकल्प का उठना क्या है? ये कारण है। किस चीज का कारण है? जो मैं शरीर से घूमने वाला कर्म कर रहा हूं, ये उस कर्म का कारण क्या है? मन का संकल्प। देखिए यहां वाणी कह रही है कि कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे शरीर के द्वारा जो कर्म होने वाला है, मान लिया मैंने सड़क पार करनी है, मैंने सामने से कोई सौदा लेना था, मैंने सड़क पार करी, सड़क पार करी, उधर से कार आई, उसने मुझे कुचल दिया, मेरी टांग टूट गई। अब मैं तो गाली उसी को दूंगा ना, कार वाले को, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ईश्वर भक्त है, वो सीधा समझ जाएगा कि मन के अंदर जो संकल्प आया सड़क पार करने का, ठीक उस वक्त पर जब कार आ रही है और मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूं, तो ये कारण जो है ये प्रभु ने ही डाला। वक्त आ गया था पैर टूटने का, इसीलिए उसके उसने वो कारण पैदा किया, मन के अंदर संकल्प डाला और मैंने कर्ता अर्थात शरीर से वो कर्म किया, मैं कर्ता बना। तो कारण भी प्रभु, कर्ता भी प्रभु। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि भ्राम यानी सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, तो शरीर का संचालन वो प्रभु स्वयं कर रहे हैं मन के अंदर कारण बनकर। तो इसीलिए जो ईश्वर भक्त है उसके जीवन से इसका बात का पता लगता है कि वास्तव में कारणकर्ता प्रभु हैं। सत्पुरुषों को इस बात में कोई वहम नहीं होता। जैसे कि महाराज जी ने एक घटना एक खुद सुनाई थी। एक गांव था, गांव में एक साधु बैठा हुआ था। गांव के लोग उस साधु के पास आए, उनसे बोले, पीर जी या बाबा जी जो भी बोले, बोले बाढ़ आ रही है, ये गांव बह जाएगा, नदी इसका कटान इधर को है, आप कृपया प्रभु से प्रार्थना करिए, अपनी शक्ति से इसको बचा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक फौड़ा ले आओ। फौड़ा लाया गया तो जो टीले का कटान हो रहा था, उन्होंने फौड़े से उसी टीले को काटना शुरू करा और मट्टी उसकी नदी में डालनी शुरू कर दी। और मुंह से क्या कह रहे हैं कि प्रभु यदि चाहता है ये गांव बहे तो जल्दी बहे, प्रभु यदि चाहता है ये गांव बहे तो ये जल्दी बहे। लेकिन प्रभु तो हो, उनकी लीला भी अपरंपार है। तो जहां उस साधु ने, उस पीर ने मट्टी फेंकी, पानी का जो धार थी उससे छूकर चलने लगी, गांव बच गया। लेकिन सत्पुरुषों का निश्चय देखो आप कि वो पूरी तरह से प्रभु आज्ञा में जीना जानते हैं, जीते हैं। तो सत्पुरुषों के जीवन से ही ये शरणागति सीखी जाती है। देखिए हमें इन बातों पर कभी विश्वास नहीं होगा क्योंकि हम संसारी लोग हैं ना, हम हर चीज अपने मन के अनुकूल चाहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर हर वक्त मन के अंदर तृष्णा, वासना और बेचैनी। तो ये जो शरणागति की स्थिति है, ये जब तक आप इन शास्त्रों को पढ़ोगे नहीं, इनको समझने की कोशिश नहीं करोगे, फिर इन पर श्रद्धा विश्वास यदि आप पर नहीं आएगा, तो आपका मन कभी भी शांत हो सकता है क्या? कितना भी सिमरन करके देख लो, पूरा जोर लगा लो आप सिमरन, ये काम आपका कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए महाराज कहते प्रेमी सिमरन करना है तो दो चीजें लाजमी है। नंबर एक ईश्वर परायणता, कि तू जब बैठा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु की याद करने बैठा है, सिमरन करने बैठा है तो सारी दुनिया को भूल जा, कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो प्रभु आज्ञा से ही होगा। लेकिन बात पे विश्वास ही नहीं होता। बरेली में डॉक्टर भीमसेन जी, उन्होंने महाजी से दीक्षा ली थी। एक दिन महाजी के सामने वार्तालाप चल रहा था उनका, तो वो महाजी से बोले, महाजी कभी कभी पेशेंट आ जाता है, क्योंकि रोगियों का इलाज करते थे वो, तो मुझको सिमरन में से बीच में उठना पड़ता है। तो महाजी बोले, प्रेमी सिमरन छोड़ के तूने बिल्कुल नहीं उठना। आगे वो तर्क करते हैं, महाराज जी कहीं कहीं भी इमरजेंसी आ जाती है, उसकी जान पे बनाती है पेशेंट की, तो आना ही पड़ता है। अब देखिए गुरु क्या कहता है इनसे, वो कहते हैं तू उसको बचाने वाला कौन है? यदि उसके उसके भाग में जीवन है तो प्रभु कोई ना कोई व्यवस्था उसकी कर देंगे। अब एक डॉक्टर क्या तर्क दे रहा है और एक वो त्रिकालदर्शी, वो परमेश्वर जो हमारा जीवन चला रहा है, हमारे अंदर विराजमान है, वो क्या निर्णय दे रहा है? वो कह रहा है सारे संसार को मैं चला रहा हूं, ये चलाने वाला कहां से आ गया सामने? देखिए इस दर्जे का विश्वास क्या हमारे अंदर संभव है? संभव है। देखिए इस प्रकार के गुरु पर विश्वास हो तब, और गुरु पर विश्वास का मतलब क्या है? उसकी जो वाणी है, उसका जो ज्ञान है, उसके द्वारा जो रचित शास्त्र हैं, उन पर हमारा शत प्रतिशत विश्वास हो। क्यों शत प्रतिशत? क्योंकि हम शत प्रतिशत मन की शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जब समय हम ईश्वर के याद करें, ईश्वर का सिमरन करें, तो मन में एक भी संकल्प उठे। हमें जो बैठे हैं, जो सिमरन करते हैं, वो जानते हैं इस बात के कि वैसे चाहे कुछ भी बवाल उठता रहा मन में, जब सिमरन करने बैठूं तो केवल प्रभु की याद आए, मुझे दुनिया की याद नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर विवेक चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य का मतलब ये होता है कि संसार में जितने भी सुख हैं वो सभी अंत में मन को बेचैन करने वाले हैं। क्योंकि सिद्धांत प्रकृति का क्या है कि हर सुख दुख में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि प्रकृति में हर वस्तु नाशवान है और परिवर्तनशील है, जिसका आरंभ तेरे अपने शरीर से होता है, जिसके लिए तुझे दुनिया चाहिए। शरीर के लिए तो दुनिया चाहिए, तेरा अपना शरीर देख ले, निरंतर परिवर्तित हो रहा है और ये नाशवान भी, मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो यही दुनिया का हाल है, शरीर संसार एक ही जैसा है। तो वो कहते हैं नाशवान संसार में, नाशवान शरीर में तू सुख की तलाश कर रहा है, इससे बड़ी गलती और क्या होगी? तो संसार में तूने कैसे जीना है? कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण प्रसाद। सिमरन करना है तो इस विवेक को सीखना पड़ेगा। यह है विवेक कि तू कारणकर्ता नहीं है, कारणकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए गीता जहां खत्म होती है 18वें अध्याय में, तो अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू सारे कर्तव्य कर्म को, धर्म का मतलब ही कर्तव्य कर्म होता है, तो तेरे बुद्धि में जो निश्चय बैठा है कि मैं करने वाला हूं, तो सारे कर्तव्य कर्मों के निश्चय को त्याग दे और मेरी शरणागत हो जा। यदि तू मेरी शरणागत होता है तो क्या मिलेगा तुझे? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। सारे पापों से मुक्ति का मतलब है तेरा मन स्थिर हो जाएगा, उसमें संकल्प का उठना बंद हो जाएगा, यही मोक्ष है और मोक्ष कुछ नहीं होता। जिस दिन आपके मन के अंदर संकल्प का उठना बंद हो जाए, उसी मन का नाम है निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। तो निर्मल मन होता है, उसका मतलब होता है कि मन की स्थिरता। मन की स्थिरता का मतलब होता है मन का संकल्प रहित होना, और मन का संकल्प रहित होने का मतलब यह है कि वासना रहित होना। महाज कहते प्रेमी एक इच्छा भी जब तक बाकी है ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता, यह इनके अनुभव की बात है। हम ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, हमारे आगे राम प्रकट हो जाए, हमारे आगे कृष्ण प्रकट हो जाए, वासना मेरी सारी दुनिया में फैली हुई है, कैसा मूर्ख हूं मैं, किसी भी शास्त्र की एबीसीडी भी नहीं समझता। तो इसीलिए ये जीव संसार में आया है निर्वास होने के लिए, मन की बेचैनी को खत्म करने के लिए। तो इसीलिए उसके लिए सिमरन रूपी दवा चाहिए इसको। तो सिमरन रूपी दवा के लिए फिर परहेज चाहिए। परहेज क्या है? विवेक और वैराग्य, और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? शरणागति। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। मुंह से कैसा कहते हैं? तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। देखिए इसका भी पाठ कर लेते हैं। इसको भी आरती बना लेते हैं हम लोग। कभी सोचते ना मुंह से मैं कह क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं और सोच क्या रहा हूं। तो हमने अपनी करनी पर ध्यान देना है, अपनी सोच पर ध्यान देना है। जिस दिन मेरी करनी और सोच शास्त्रों के अनुसार हो जाएगी उस दिन मेरा मन पूरी तरह शांत होगा। ईश्वर जो अंदर अंतर्यामी है वो मेरे लिए प्रकट होगा। फिर दुनिया की कोई मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यहां तक कि मौत भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। बाल ना बीका कर सके चक्रवर्त भूपाल, वाणी कह रही है। तो ईश्वर भक्त है, चक्रवर्ती राजा भी उसका बाल बीका नहीं कर सकता। तो ये जो शरणागति है हमको उस स्थिति में ले आती है जिसके लिए सत्संग जरूरी है, सत्पुरुषों की बातें पढ़ना सुनना जरूरी है और उनको जीवन में धारण करना।